घर आने के बाद आयु तैयार होने के बाद अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो समझ गई थी कि ज़रूर रुद्र ही होगा। आयु ने उठकर दरवाज़ा खोला तो रुद्र के साथ सिमरन भी थी। बात करें, अंदर आने से पहले रुद्र ने पूछा, जिस पर जवाब में आयु ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र और सिमरन अंदर आ गए तो आयु ने दरवाज़ा वापस बंद किया और उनके पास आकर बैठ गई। बातचीत की शुरुआत करते हुए सिमरन ने कहा, तुम रेस्टलेस लग रही हो, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे क्या होगा भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आयु ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर रुद्र ने सिर हिला दिया। रुद्र ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले तो हमसे बातें छुपाना बंद करो। अयान ने मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी थी और यू आर नॉट वेल। रुद्र की बात सुनकर आयु का सिर झुक गया। सिमरन ने आयु का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? अब तो उसे गए हुए 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। देखो आयु, तुम्हारी खुशी के लिए मैं डैड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पर तुम अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें बताना होगा। जैसे ही रुद्र की बात खत्म हुई, आयु ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयु ने ना में सिर हिलाते हुए घबराई आवाज़ में कहा, प्लीज़ डोंट डू दिस भाई। आयु की आँखों में नमी थी। मैं भी ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है आयु, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह भागा दौड़ी की। तुम तो ठीक से घर भी नहीं आती, रुद्र ने आयु को समझाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है मैं क्या घर आना नहीं चाहती? लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मॉम के ताने शुरू हो जाते हैं, आयु ने जवाब दिया। तुम उनकी फ़िक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूँगी, बस तुम टाइम पर घर आ जाया करो, सिमरन ने उसे आश्वासन दिया। रुद्र ने भी सिमरन की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम टाइम पर घर आओगी, ठीक से खाना खाओगी, रेस्ट करोगी, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रॉमिस करो तुम ये सब करने के लिए तैयार हो, उसके बाद मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। रुद्र से किसी भी तरह का प्रॉमिस करने के लिए आयु ने कुछ पल सोचा। रुद्र का हाथ आयु की तरफ बढ़ा हुआ था। थोड़ी देर सोचने के बाद आयु ने अपना हाथ रुद्र के हाथ में रख दिया था। ओके, आई प्रॉमिस कि मैं जब भी हॉस्पिटल या अपने कामों से फ्री हो जाऊंगी, घर जरूर आऊंगी, दिन में एक बार तो ज़रूर, आयु ने प्रॉमिस करते हुए कहा। उसके बाद रुद्र की बारी थी। रुद्र ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारी फ्रीडम पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। रुद्र के प्रॉमिस करते ही आयु के फेस पर स्माइल आ गई, तो रुद्र ने उसे हक कर लिया। आयु को हक करते ही रुद्र की आंखें नम होने लगी और उसे अनु की याद आने लगी। सिमरन ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। उसने इशारे से रुद्र को आयु के सामने रोने से मना किया। यू नो वॉट बच्चा, तुम हम सिबलिंग्स में सबसे छोटी हो और हमने तुम्हें हमेशा डॉल की तरह ट्रीट किया है, प्लीज़ हमारी इस डॉल को टूटने मत देना, रुद्र ने नम आंखों से कहा। उसने आयु से छुपकर अपने आंसुओं को साफ किया। उसकी बात सुनकर आयु की पलकें भी भीग गई थीं। वो रुद्र से अलग हुई और हाँ में सिर हिलाया। रुद्र अगर थोड़ी देर और आयु से बात करता तो वो पक्का रो देता, ये सोचकर सिमरन उसे वहां से ले गई। अपने कमरे में आते ही रुद्र ने सिमरन को हक किया और अपने दिल का दर्द निकालने लगा। मैं अनु के बाद इसे बिल्कुल नहीं खोना चाहता, मॉम इसके साथ कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाए पर मैं चाहकर भी इसे नहीं डांट पाता, रुद्र ने भर्राई आवाज़ में कहा। ना जाने क्यों मम्मी जी को लगता है अनु की जान आयु की वजह से गई है, गलती अकेली आयु की नहीं है कि वो घर नहीं आती, जब भी वो घर पर आती है मम्मी जी के साथ उसकी बहस हो जाती है और फिर बातों बातों में वो आयु को ये जता ही देती है कि उसने अनु की सर्जरी ठीक से नहीं की। सिर्फ आयु को ही नहीं, मम्मी जी को भी इस बात को समझना होगा, अकेली वो दर्द में नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा दर्द में आयु है, सिमरन ने रुद्र को आयु और तारा जी के रिश्ते से अवगत कराया। रुद्र उससे अलग हुआ और फिर कुछ सोचते हुए से बोला, डैड हमेशा बिजनेस में लगे रहते हैं तो उन्हें घर में क्या चल रहा है इस बात का पता नहीं रहता, मैं उन्हें आयु के बारे में नहीं बता सकता, तो मॉम के बारे में भी नहीं बताना चाहता, उन्हें हर्ट होगा। डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से हैंडल करने की कोशिश करूंगी, सिमरन ने मुस्कुराकर कहा। रुद्र ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके फोरहेड पर किस किया। आयु के प्रॉमिस करने के बाद वो आयु की तरफ से बेफिक्र हो चुका था, तो वहीं बाकी चीज सिमरन ने संभालने की हाँ कह दी थी। अपनी तरफ से पूरा मामला संभालने के बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम के लगभग 6 बजे के करीब आयु तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची। उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया था। आज पूरे दिन वो घर पर आराम कर रही थी। हॉस्पिटल आते ही आयु सबसे पहले गौरवी जी के रूम में गई। रूम में हॉस्पिटल अटेंडेंट के अलावा और कोई नहीं था। आयु ने वहां जाते ही नर्स से पूछा, इन्हें अब तक होश नहीं आया है क्या? नहीं डॉक्टर, सुबह से सब वेट कर रहे हैं, इन्हें होश नहीं आया तो कुछ देर मुझे यहाँ छोड़कर इनके फैमिली मेम्बर खाना खाने के लिए गए हुए हैं, नर्स ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, आयु ने नर्स को बाहर जाने के लिए कहा। नर्स ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। आयु उनके पास वाली टेबल पर बैठकर उनकी पल्स वगैरह चेक करने लगी। उसने ध्यान दिया गौरवी जी को होश आ रहा था। थैंक गॉड इन्हें टाइम से होश आ गया, वरना इनका वो पोता मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता। आयु ने मन ही मन भगवान को थैंक्स कहा। आयु ने तुरंत एक नर्स को अपनी हेल्प के लिए बुलाया और उनके होश में आने के बाद हार्टबीट वगैरह चेक करने लगी। वहीं आरव और कबीर खाना खाकर बाहर आए तो गौरवी जी के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे को बंद देखकर आरव घबरा गया। उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, ये गेट तो पूरे दिन से खुला था, अब बंद कैसे हुआ? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो आपके साथ था, कबीर ने जवाब दिया। आरव ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसके साथ कबीर भी था। उसने देखा आयु नर्स के साथ गौरवी जी का चेकअप कर रही थी। उन्हें होश आ चुका था, ये देखकर आरव ने राहत की सांस ली। वहीं आरव को अचानक देखकर आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, नौकर के अंदर नहीं आ सकते थे क्या? जब तक इनका पूरा चेकअप नहीं हो जाता, हम दोनों के अलावा और कोई अंदर नहीं आ सकता, तो तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ। आयु के इस तरह आरव को डांटने पर गौरवी जी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर आरव समझ गया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डॉक्टर, तुम्हें जो चेकअप करने हैं अभी यहीं मेरे सामने करो। आई डोंट ट्रस्ट यू, आरव ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। ओ रियली, यू डोंट ट्रस्ट मी? आयु ने उसे आंखें दिखाकर कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि ये सर्जरी मैंने ही की है। भूल मैं नहीं, तुम रही हो। जब तुम अंदर थी तब भी मैंने तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी थी। अब टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप अपना काम करो, आरव ने रूखे तरीके से कहा और वहां लगी चेयर पर आराम से बैठ गया। उसके एटीट्यूड से आयु समझ गई थी कि आरव वहां से कहीं नहीं जाने वाला, तो वो गौरवी जी के चेकअप करने लगी।
उसके बाद उसने कुछ टेस्ट लिखे और नर्स को देते हुए कहा, डॉक्टर अयान को ये दे देना और बोल देना कि ये जरूरी टेस्ट करवा दें, इनकी सिचुएशन अभी स्टेबल है, ये सारे टेस्ट कल सुबह करवाने हैं। ओके डॉक्टर, कहकर नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद आयु ने आरव की तरफ घूर कर देखा। कबीर ने उसकी नज़रों को समझ लिया था। वो आरव से धीमी आवाज़ में बोला, मैं दादी की मेडिसिन्स वगैरह की अपडेट ले लेता हूँ। कबीर जाने के लिए मुड़ा, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आरव कबीर के पास गया और दबी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे इसके साथ अकेले छोड़कर जा रहे हो? देखा नहीं थोड़ी देर पहले मैंने इसके साथ कैसे बात की थी? उसके लिए ये दादी के सामने मेरी भर भर के इंसल्ट करेगी, ये तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, हैव फन, कबीर ने हल्का मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आरव बोला, ठीक है फिर, दादी का ख्याल तो तुम रख ही लोगी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना था, अब मुझे चलना चाहिए। आरव ने आयु के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधा जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि आयु ने पीछे से तेज आवाज में कहा, रुको। आयु की आवाज सुनकर आरव वहीं रुक गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। गौरवी जी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आयु 30 कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो आरव को गुस्से में देख रही थी। डॉक्टर, क्या करने का सोच रही हो तुम? आरव ने हड़बड़ाते हुए पूछा। आगे से मुझसे बदतमीजी से बात मत करना, आयु ने सख्त शब्दों में कहा। और कुछ? आरव ने उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। हाँ, तुम मुझसे दूर रहा करो, आयु ने अटकते हुए कहा। एक पल के लिए मानो आरव भूल गया कि वो कहाँ है या गौरवी जी उन्हें देख रही हैं। वो अपने कदम आयु की तरफ बढ़ाने लगा, जबकि उसे अपने पास आता देख आयु के कदम अपने आप पीछे होने लगे। कुछ ही देर में आयु दीवार के सटी थी, तब तक आरव उसके करीब पहुंच चुका था। आरव आयु के बिल्कुल करीब था, उसका एक हाथ आयु के बगल में दीवार पर टिका था। आरव ने उसके पास आकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास कब आया था डॉक्टर? आयु ने नजरें नीची करके जवाब में कहा, तुम अब आ रहे हो। आरव के ज्यादा पास होने पर आयु की हार्टबीट बढ़ने लगी थी। उसने उसे खुद से दूर किया और आरव के पकड़ से बाहर आकर खड़ी हो गई। आयु की इस हरकत पर आरव मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और कहा, ठीक है, अब से नहीं आऊंगा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तो बिल्कुल नहीं। अपनी बात कहकर आरव जाने लगा। आरव बाहर निकलने ही वाला था कि तभी आयु ने फिर तेज आवाज में कहा, रुको। आरव ने उसकी तरफ देखा और इस बार हल्का चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या है? कैन यू डू मी अ फेवर? जैसे ही आयु ने कहा, आरव उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। अब तक वो ही आयु से बात करने के लिए उसके पास आने की कोशिश करता था, लेकिन आज पहली बार आयु ने उससे कुछ मांगा था। साथ इस बार आयु की आवाज में गुस्सा नहीं, नरमी थी।